आज हम महाभारत की दुनिया में गहरी छानबीन करेंगे, लेकिन इसे मतलब सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल की तरह देखेंगे।
टाइम कैप्सूल, ये अच्छा शब्द है।
हाँ, एक ऐसा कैप्सूल जिसमें प्राचीन भारत का समाज, उसके नियम और रिश्ते नाते बंद है, और आज हम इसे खोलने जा रहे हैं।
बिल्कुल।
हमारे सोर्सेस कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं जो किनशिप, कास्ट और क्लैन जैसे विषयों पर फोकस करते हैं।
और हमारा मकसद इन सवालों के जवाब रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे सोशल डीएनए को डीकोड करना है।
सही।
हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य क्यों नहीं है, बल्कि इतिहासकारों के लिए उस दौर को समझने का एक प्राइसलेस सोर्स क्यों है।
एक खिड़की की तरह जिससे हम हजारों साल पहले झांक सकते हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए इस टाइम कैप्सूल को खोलने की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हमारे सोर्सेज में पहला ही सवाल है, हाउ इज महाभारत अ डायनामिक टेक्स्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जब हम कहते हैं कि महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है, तो इसका असल में मतलब क्या है?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। डायनामिक का मतलब है कोई ऐसी रचना जो पत्थर की लकीर न हो,
अच्छा,
जो एक बार में किसी एक लेखक ने बैठकर नहीं लिखी, बल्कि जो समय के साथ एक नदी की तरह बहती रही, बढ़ती गई और जिसमें नई नई धाराएं जुड़ती गईं।
तो ये एक सिंगल क्रिएशन नहीं है।
नहीं, महाभारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, ये एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी है जिसे बनने में सदियां लगी।
सदियां मतलब कितना समय लगा होगा?
लगभग 1000 साल।
1000 साल?
हाँ, इतिहासकार मानते हैं कि इसका विकास 500 बीसी से 500 सीई के बीच हुआ। 1000 साल तक इसमें कहानियां, उपदेश और विचार जुड़ते रहे।
तो ये किसी एक ऑथर का प्रोजेक्ट नहीं था?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कई पीढ़ियों का योगदान था।
तो इसका मतलब इसमें अलग अलग समय की परतें होंगी, लेयर्स होंगी?
एग्जैक्टली। और यही इसका दूसरा पॉइंट है, लेयर्ड कंटेंट। इसमें आपको दो तरह की लेयर्स साफ दिखेंगी।
कौन कौन सी?
पहली है नैरेटिव, यानी कहानियों वाला हिस्सा, जिसमें कौरवों और पांडवों का संघर्ष है, एक्शन है, ड्रामा है। और दूसरी परत है डिडैक्टिक, यानी उपदेशात्मक हिस्सा। इसमें सामाजिक नियमों, कर्तव्यों और दर्शन की शिक्षा दी गई है।
अच्छा, जैसे भगवद गीता, वो तो युद्ध के मैदान में दिया गया एक उपदेश है।
एकदम सही पकड़ा।
तो क्या वो भी बाद में जोड़ा गया एक डिडैक्टिक लेयर है?
बिल्कुल, भगवद गीता इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वो कहानी का हिस्सा भी है और एक गहरा दार्शनिक उपदेश भी।
सही।
ये दिखाता है कि कैसे कहानी और शिक्षा को एक साथ बुना गया।
और मुझे लगता है कि इतने लंबे समय में बनने की वजह से इसके अलग अलग वर्जन्स भी मिलते होंगे।
हाँ, और ये तीसरा पॉइंट है, मल्टीपल वर्जन्स।
मतलब
भारत के अलग अलग कोनों में, अलग अलग भाषाओं में महाभारत के रीजनल वेरिएशंस मिलते हैं। हर क्षेत्र ने इस कहानी को अपने तरीके से कहा, अपने किरदारों को उभारा।
अच्छा।
इसे स्कल्पचर, पेंटिंग और ड्रामा जैसे आर्ट फॉर्म्स में भी ढाला गया, जिससे ये हमेशा जिंदा और रेलेवेंट बना रहा।
इतने सारे वर्जन्स, तो फिर असली महाभारत कौन सा है, ये तय करना तो बहुत मुश्किल होगा।
बहुत ज्यादा मुश्किल। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए 1919 में एक बहुत बड़ा एकेडेमिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ।
कौन सा प्रोजेक्ट?
द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। इसे V.S. सुखथांकर जैसे विद्वानों की टीम ने लीड किया और इसे पूरा करने में 47 साल लग गए।
47? 47 साल?
हाँ।
ये तो अपने आप में एक महाकाव्य लिखने जैसा है। तो इस टीम ने किया क्या, उनका मेथड क्या था?
उनका काम मतलब एक जासूसी जैसा था। उन्होंने पूरे देश से, कश्मीर से लेकर केरल तक, संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठी की।
ओके।
फिर उन्होंने हर मैन्युस्क्रिप्ट के हर श्लोका का मिलान किया। जो श्लोका ज्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स में कॉमन थे, उन्हें उन्होंने मेन टेक्स्ट माना और पब्लिश किया।
और उन हिस्सों का क्या जो सिर्फ कुछ ही मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिले, मतलब जो रीजनल वेरिएशंस थे?
उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया गया, उन रीजनल वेरिएशंस को फुटनोट्स और अपेंडिसेस में डाल दिया गया।
अच्छा।
इससे हमें पहली बार एक ऐसा नक्शा मिला जिससे हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल कहानी क्या रही होगी और समय के साथ उसमें क्या क्या जुड़ता गया।
तो मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सवाल बहुत जरूरी है।
हाँ, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है।
इसमें डायनामिक टेक्स्ट का मतलब समझाना है और फिर एवोल्यूशन, लेयर्ड कंटेंट और मल्टीपल वर्जन्स जैसे पॉइंट्स लिखने हैं।
और V.S. सुखथांकर के क्रिटिकल एडिशन का जिक्र करने से जवाब और मजबूत होगा।
तो की टेकअवेज हैं, टाइमलाइन 500 BC से 500 CE, की पर्सन V.S. सुखथांकर और स्टार्ट ईयर 1919।
बिल्कुल। यही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है।
तो ये तो साफ हो गया कि महाभारत एक सिंगल फिक्स किताब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये टेक्स्ट हमें उस जमाने के समाज की कौन कौन सी तस्वीरें दिखाता है। हमारे सोर्सेस का अगला सवाल यही है, असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द महाभारत एज अ सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट इंडियन सोसाइटी।
ये कहानी सिर्फ कौरवों और पांडवों की लड़ाई की नहीं है, ये उस दौर के समाज का आप कह सकते हैं एक आईना है, एक डॉक्यूमेंट है। इससे हमें उस समय के सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस, यानी सामाजिक नियमों, मूल्यों और परंपराओं के बारे में पता चलता है।
जैसे कि सोशल नॉर्म्स की बात करें तो सोर्सेज में कुछ खास शब्द आते हैं, पैट्रिलिनी, एक्सोगैमी और पॉलीएंड्री।
हाँ,
चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पैट्रिलिनी का क्या मतलब है?
पैट्रिलिनी का मतलब है पितृवंशिकता, यानी वंश पिता से पुत्र को मिलता है।
अच्छा।
सत्ता, संपत्ति और परिवार का नाम सब कुछ पुरुष की लाइन से चलता है। महाभारत का तो पूरा युद्ध ही इसी पैट्रिलिनियल सक्सेशन के लिए है।
कि हस्तिनापुर का सिंहासन किसे मिलेगा?
शादी नहीं कर सकते,
आपको गोत्र से बाहर विवाह करना होगा।
बिल्कुल, ये एक तरह से किनशिप नेटवर्क को बढ़ाने का तरीका था।
और पॉलीएंड्री तो सबसे अनोखा, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण द्रौपदी है।
हाँ, एक स्त्री के एक से ज्यादा पति।
बिल्कुल,
द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह पॉलीएंड्री का उदाहरण है। ये दिखाता है कि जहाँ एक तरफ नियम थे, वहीं समाज में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी थी जो बहुत अनयूजुअल थी।
तो ये तो हुए सामाजिक नियम, लेकिन वैल्यूज और कंसर्न्स के बारे में ये हमें क्या बताता है?
ये हमें बताता है कि उस समाज के बड़े सवाल क्या थे, जैसे एक राजा के आदर्श क्या होने चाहिए, धर्म का असली मतलब क्या है, संपत्ति पर किसका अधिकार है, खासकर जमीन और महिलाओं पर। ये वो सवाल है जिनसे वो समाज जूझ रहा था।
और सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी वो है थियोरी वर्सेस प्रैक्टिस के बीच का तनाव।
हाँ बिल्कुल,
मतलब धर्मशास्त्रों जैसी किताबों में जो आदर्श नियम लिखे गए थे और असल समाज में जो होता था, उनके बीच का फर्क महाभारत में साफ दिखता है।
एकदम सही, ये महाभारत की सबसे बड़ी खूबी है। वो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि नियम क्या होने चाहिए, बल्कि ये भी दिखाता है कि लोग उन नियमों को कैसे तोड़ते थे, उनसे कैसे बचते थे और असल जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी।
तो एग्जाम के लिए इसमें 3 की पॉइंट्स हो गए, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कंसर्न्स और थ्योरी वर्सेज प्रैक्टिस का टेंशन।
हाँ, और कीवर्ड्स याद रखने हैं, पैट्रिलिनी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री।
चलिए अब इस खींचतान को कुछ और ठोस उदाहरणों से समझते हैं। हमारे सोर्सेज में एक बड़ा सवाल है जो शायद 8 मार्क्स का भी हो सकता है। द महाभारता इज अ गुड सोर्स टू स्टडी द सोशल वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स।
हाँ, ये पिछले सवाल से ही जुड़ा है, लेकिन यहाँ हमें एग्जाम्पल्स पर ज्यादा फोकस करना है। और तीसरा, जेंडर नॉर्म्स।
तो पहले किनशिप एंड फैमिली से शुरू करते हैं। आपने बताया कि पूरा महाकाव्य ही पैट्रिलिनियल सक्सेशन के झगड़े पर आधारित है।
हाँ, हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे मिलेगी, यही केंद्रीय संघर्ष है।
लेकिन ये सिर्फ संघर्ष ही नहीं दिखाता।
नहीं, एक तरफ पांडवों के बीच की एकता है जो एक आदर्श भाईचारे का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के कजिन्स कौरवों से उनकी भयानक दुश्मनी है।
तो किनशिप जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है।
एग्जैक्टली।
अब आते हैं सोशल हायरार्की, यानी वर्णा सिस्टम पर। महाभारत इसे कैसे दिखाता है?
महाभारत ज्यादातर उन नियमों को मजबूत करता है जो धर्मशास्त्रों में लिखे हैं।
अच्छा।
इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है एकलव्य की कहानी। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो क्षत्रिय वर्ण का नहीं था।
ये दिखाती है कि वर्णा सिस्टम कितना कठोर था।
बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने कहा, महाभारत हमें एक्सेप्शंस भी दिखाता है, जैसे भीम और हिडिंबा का विवाह।
हाँ।
हिडिंबा एक राक्षसी थी, यानी वो वर्णा सिस्टम से बाहर थी, फिर भी भीम ने उससे विवाह किया। ये दिखाता है कि प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के बाहर भी समाज में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था।
और अब तीसरा और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा, जेंडर एंड मैरिज नॉर्म्स। महाभारत हमें एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी पुरुष प्रधान समाज की तस्वीर दिखाता है ना?
बहुत साफ तौर पर। इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण वो घटना है जब युधिष्ठिरा अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा देते हैं।
हाँ, ये
एक पल के लिए सोचिए, ये घटना क्या कहती है? ये बताती है कि उस समाज में एक पत्नी को पति की संपत्ति समझा जाता था,
जिसे वो हार भी सकता है।
हाँ।
क्या द्रौपदी ने इसका विरोध नहीं किया?
उन्होंने किया। भरी सभा में उन्होंने जो सवाल पूछे कि क्या युधिष्ठिर खुद को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे,
वो सवाल आज भी उतने ही पावरफुल हैं। तो महाभारत हमें सिर्फ शोषण नहीं दिखाता बल्कि उसके खिलाफ उठती आवाज भी दिखाता है।
इसके अलावा कन्यादान का भी जिक्र है।
हाँ, यानी कन्या का दान। इसे पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य बताया गया है जो फिर से स्त्री पर पिता और फिर पति के अधिकार को दिखाता है।
तो 8 मार्क्स के सवाल के लिए किनशिप, सोशल हायरार्की और जेंडर, इन तीनों सेक्शंस को एकलव्य, भीम हिदिम्बा और द्रौपदी के एग्जाम्पल्स के साथ समझाना होगा।
बिल्कुल।
हमने कई बार नियमों की किताब यानी धर्म सूत्रास और धर्मशास्त्रास का जिक्र किया, तो चलिए अब जरा उन किताबों के अंदर झांकते हैं। अगला सवाल है, व्हाट वर द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर गिवन इन द धर्म सूत्रास और धर्मशास्त्रास।
इन ग्रंथों ने एक बहुत ही साफ सोशल हायरार्की बनाई और हर वर्ण के लिए आदर्श व्यवसाय तय किए।
क्या थे वो?
पहले ब्राह्मणास, उनका काम था वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना और दान लेना देना।
दूसरा
क्षत्रियस,
क्षत्रियस,
इनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना और शासन चलाना। तीसरे वैश्यस, इनसे उम्मीद की जाती थी कि वे खेती करें, पशुपालन करें और व्यापार करें।
और आखिर में शूद्रस,
शूद्रस, इनके लिए सिर्फ एक ही काम बताया गया, ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करना।
ये तो एक बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन सवाल ये है कि ब्राह्मणों ने, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, ये कैसे सुनिश्चित किया कि पूरा समाज ही नियमों को माने?
उन्होंने बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटजीज अपनाई। तीन मुख्य रणनीतियां थी।
पहली,
उन्होंने कहा कि ये वर्णा ऑर्डर डिवाइन ओरिजिन का है, यानी इसे ईश्वर ने बनाया है।
अच्छा।
अब जब कोई चीज सीधे ईश्वर से जोड़ दी जाए तो उस पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सही बात है। और दूसरी स्ट्रेटजी?
दूसरी, उन्होंने राजाओं को सलाह दी कि वो अपने राज्य में इन नियमों को लागू करवाएं, यानी उन्होंने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया।
और तीसरी
और सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी, उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनका स्टेटस उनके जन्म से तय होता है।
स्टेटस बाय बर्थ?
हाँ, आप जिस वर्ण में पैदा हुए हैं आप वही रहेंगे और आपको उसी के अनुसार काम करना होगा।
यानी पहले उसे दैवीय बताओ, फिर राजा से लागू करवाओ और फिर लोगों को यकीन दिलाओ कि ये उनकी नियति है।
हाँ, और इसी सिस्टम ने हजारों साल तक भारतीय समाज को प्रभावित किया है।
और आखिर में एक छोटा लेकिन जरूरी सवाल जो इसी सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा है, व्हाट वर द रूल्स ऑफ गोत्रास?
गोत्र सिस्टम, जो खासकर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस थी, उसके शादी को लेकर दो मुख्य नियम थे।
क्या थे वो?
पहला नियम था कि शादी के बाद महिला को अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपनाना होता था। ये पैट्रिलिनी के आइडियो को और मजबूत करता था।
और दूसरा
नियम था एक्सोगैमी, जिसकी हमने पहले भी बात की, यानी एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते,
उन्हें अपने गोत्र से बाहर ही विवाह करना होता था।
बिल्कुल।
तो आज हमने देखा कि महाभारत सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ या महाकाव्य नहीं है।
नहीं,
ये एक डायनेमिक टेक्स्ट है जो हजारों सालों में विकसित हुआ है। ये प्राचीन भारत के सामाजिक ढांचे, उसके परिवारों, उसकी वर्ण व्यवस्था और जेंडर के नियमों को समझने के लिए एक प्राइसलेस सोर्स है।
और ये हमें आदर्श नियमों और असल जिंदगी की खींचतान दोनों दिखाता है।
बिल्कुल।
और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। महाभारत हमें प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, यानी जो किताबों में लिखा है, और एक्चुअल प्रैक्टिसेस, यानी जो असल में होता है, के बीच का एक लगातार तनाव दिखाता है।
सही।
आज के समाज में आदर्श नियमों और वास्तविक जीवन के बीच इस तरह के तनाव के क्या उदाहरण देखे जा सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।